एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं।
हाँ, एक ऐसा सफर जो हमारे दिमाग के अंदर जाता है।
बिल्कुल, ये समझने के लिए कि भाई हमारा दिमाग सोचता कैसे है ना, कैसे फैसले लेता है और क्यों कभी कभी मतलब बिल्कुल अजीब सी हरकतें करता है।
सही कहा।
हम आज गोता लगा रहे हैं जोनाथन एस टीबी इवांस की किताब थिंकिंग एंड रीजनिंग में। ये बहुत प्रभावशाली किताब है।
हाँ, और ये हमें ड्यूअल प्रोसेस थ्योरी से मिलवाती है, मतलब सोचने के दो तरीके।
मेरा नाम है मेजबान एक।
और मेरा नाम है मेजबान दो। और देखिए, ये विषय ना वाकई बहुत काम का है आज के जमाने में।
क्यों ऐसा लगता है आपको?
अरे जरा सोचिए, हम दिन भर में कितने सैकड़ों निर्णय लेते हैं। सुबह क्या पहनना है से लेकर रात को क्या खाना है।
हाँ, और ऑफिस के काम के फैसले अलग।
बिल्कुल, कुछ फैसले तो ऐसे पलक झपकते ही हो जाते हैं
हाँ
और कुछ पे हम घंटों सोचते रहते हैं।
हाँ सही।
तो सवाल यह है कि क्यों क्यों कभी हम इतने सटीक, इतने तार्किक होते हैं?
और कभी एकदम से मतलब ऐसी चूक कर जाते हैं जो बाद में सोचो तो लगता है अरे ये क्या कर दिया।
वही तो, ये किताब इसी क्यों का पर्दा हटाने की कोशिश करती है। ये बताती है कि हमारे दिमाग के अंदर ना सोचने के दो अलग अलग इंजन हैं जो एक साथ चल रहे हैं।
दो इंजन?
हाँ,
अच्छा,
तो इन इंजनों पे बात करने से पहले जरा लेखक के बारे में जान लें, जोनाथन इवांस।
हाँ जरूरी है। देखिए, जोनाथन इवांस कोई कहानीकार नहीं है, वो एक बड़े वैज्ञानिक हैं।
अच्छा,
ब्रिटेन की प्लाईमाउथ यूनिवर्सिटी में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मतलब कॉग्निटिव साइकोलॉजी के एमेरिटस प्रोफेसर हैं
ओह वाओ,
और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आप समझिए इसी सवाल में लगा दी कि इंसान सोचता कैसे है, तर्क कैसे करता है।
यानी दशकों का अनुभव है क्षेत्र में। बिल्कुल, और वो सिर्फ किताबी बातें करने वाले प्रोफेसर नहीं हैं, उन्हें इस ड्यूअल प्रोसेस थ्योरी का एक तरह से कहें तो मुख्य आर्किटेक्ट माना जाता है।
अच्छा,
उन्होंने इसे साबित करने के लिए बड़े दिलचस्प प्रयोग भी डिजाइन किए, जैसे वो एक वासान सिलेक्शन टास्क है, एक पहेली जैसा।
हाँ सुना है मैंने इसके बारे में।
उसके विश्लेषण से इन्होंने काफी कुछ साफ किया। इनकी खासियत यह है कि वो सिर्फ मनोविज्ञान नहीं बल्कि तर्कशास्त्र, निर्णय लेने की प्रक्रिया और यहाँ तक कि न्यूरोसाइंस यानी दिमाग का विज्ञान,
सबको जोड़कर देखते हैं।
हाँ, सबको मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं।
मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी जो आपने बताई थी कि वो हमारी अंदर की आवाज या इंट्यूशन को,
हाँ, सहज ज्ञान।
हाँ सहज ज्ञान को सिर्फ गलतियों का सोर्स नहीं मानते। वो कहते हैं कि यह अक्सर बहुत काम की चीज होती है ना, मतलब एडाप्टिव होती है।
बिल्कुल, ये नहीं कि बस तार्किक सोच ही सब कुछ है, सहज ज्ञान भी अपनी जगह जरूरी है।
जो कि ये किताब आखिर करती क्या है, इसका मेन पॉइंट क्या है?
देखिए, किताब का मुख्य मकसद है हमें सोचने का एक नया चश्मा देना।
चश्मा? कैसा चश्मा?
ड्यूअल प्रोसेस थ्योरी का चश्मा ये समझने में मदद करती है कि हम इंसान जो भाई चांद तक पहुंच गए, इतने जटिल समाज बना लिए,
हाँ
वो अक्सर ऐसी गलतियां क्यों करते हैं जो मतलब पहले से पता होती हैं,
अच्छा
जिन्हें हम कॉग्निटिव बायस या पूर्वाग्रह कहते हैं।
अच्छा तो ये सिर्फ बायसेस की लिस्ट नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ लिस्ट नहीं पकड़ाती, ये उस मशीनरी को समझाती है जिसके अंदर ये बायसेस पैदा होते हैं, ये उस जड़ तक जाती है।
ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है।
हाँ, ये किताब हमें एक तरह की दिमागी यात्रा पर ले जाती है। शुरुआत होती है उस पुराने सवाल से कि क्या इंसान तार्किक प्राणी है?
हाँ सदियों से दार्शनिक यही कहते आए हैं।
बिल्कुल, पर जब मनोवैज्ञानिकों ने लैब में प्रयोग करने शुरू किए तो पाया कि अरे, हम तो अक्सर तर्क के सीधे सीधे नियमों से भटक जाते हैं। यहीं पर इवांस आते हैं और कहते हैं, रुको जरा, शायद दिमाग में कोई एक सिंगल तर्क का इंजन है ही नहीं।
तो फिर क्या है?
इसके बजाय वो दो अलग अलग तरह की सोच प्रणालियों मतलब प्रोसेसिंग सिस्टम्स का मॉडल देते हैं।
अच्छा, वो दो इंजन जिनकी बात हो रही थी।
हाँ वही, इसे ऐसे समझें कि हमारे दिमाग में दो मोड हैं। पहला है टाइप वन।
टाइप वन?
हाँ, यह है सुपरफास्ट, ऑटोमैटिक, सहज, जैसे हमारी गट फीलिंग, पहली प्रतिक्रिया, हमारी आदतें, ये सब यहीं से आता है। ये हमारे रोजमर्रा के ज्यादातर काम संभालता है बिना ज्यादा दिमागी जोर लगाए।
ठीक है, ये हुआ टाइप वन। और दूसरा?
दूसरा है टाइप टू। यह है धीमा, सोच समझकर चलने वाला। इसमें मेहनत लगती है, दिमागी जोर लगता है।
अच्छा, जैसे?
जैसे जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं या कोई मुश्किल गणित का सवाल हल कर रहे होते हैं, या मान लीजिए अगले महीने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, ये सचेत होता है। हम जानते हैं कि हम सोच रहे हैं और ये नियमों पर चल सकता है।
तो पूरी किताब इन्हीं दो सिस्टम्स के बारे में है?
हाँ, मोटे तौर पर ये कैसे काम करते हैं, कभी आपस में टकराते हैं, कभी एक दूसरे का साथ देते हैं, हमारी भावनाओं और हमारे विश्वासों का इन पर क्या असर होता है, और सबसे जरूरी, हमारी ये जो सचेत सोच है टाइप टू वाली, उसकी सीमाएं क्या हैं।
ठीक है, तो चलिए अब इस ड्यूल प्रोसेस फ्रेमवर्क को थोड़ा और मतलब करीब से देखते हैं, ये टाइप वन और टाइप टू।
हाँ, ये किताब का बिल्कुल दिल है, समझिए। तो जैसा अभी कहा, टाइप वन प्रोसेसिंग, सोचिए ये हमारे दिमाग का ऑटो पायलट है।
ऑटो पायलट जैसे हवाई जहाज का।
हाँ, कुछ ऐसा ही, तेज, अपने आप चलने वाला, बिना ज्यादा कोशिश के। जैसे साइकिल चलाना सीखते वक्त बहुत ध्यान देना पड़ता है, पर एक बार सीख गए तो
हाँ, फिर तो बस अपने आप चलती है, ध्यान कहीं और भी हो सकता है।
बिल्कुल, वो टाइप वन है। ये हमारी भावनाओं, तुरंत वाली प्रतिक्रियाओं और सहज ज्ञान का सोर्स है। और ये बना कैसे है? हमारे अनुभवों से और लाखों सालों के विकास, एवोल्यूशन से। और मजे की बात ये कि ये अक्सर पर्दे के पीछे से काम करता है, हमें पता भी नहीं चलता। एनुअल मोड है, ऑटो पायलट बंद, अब कंट्रोल हाथ में।
मतलब धीमा
धीमा, नियंत्रित, और इसमें वाकई मेहनत लगती है, दिमागी बैटरी खर्च होती है। जैसे कोई नई भाषा सीखना हो, या कोई मुश्किल रिसर्च पेपर समझना हो, या शतरंज की अगली चाल सोचनी हो। ये तब एक्टिवेट होता है जब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं, विश्लेषण करते हैं, या योजना बनाते हैं। ये सचेत होता है और ये नियमों के हिसाब से चल सकता है, लॉजिक लगा सकता है।
लेकिन इसकी एक सीमा भी बताई थी आपने।
हाँ, बहुत बड़ी सीमा, वो है हमारी वर्किंग मेमोरी, कार्यकारी स्मृति। मतलब एक समय में हम कितनी जानकारी अपने दिमाग में एक्टिव रख सकते हैं, वो सीमित है। इसीलिए टाइप टू जल्दी थक जाता है, ज्यादा देर तक हम मुश्किल चीजों पर फोकस नहीं कर पाते।
अच्छा, तो ये दो अलग अलग दिमाग नहीं है?
नहीं, इवांस इसी बात पर जोर देते हैं, ये दो अलग दिमाग नहीं बल्कि सोचने के दो तरीके हैं, और ये लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं।
कैसे इंटरैक्ट करते हैं?
एक मशहूर मॉडल है जिसे कहते हैं डिफॉल्ट इंटरवेंशनिस्ट मॉडल।
डिफॉल्ट इंटरवेंशनिस्ट, ये क्या है?
मतलब ये है कि ज्यादातर स्थितियों में टाइप वन झट से एक जवाब या एक एहसास पेश कर देता है, ये डिफॉल्ट सेटिंग है।
ठीक है,
फिर अगर हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, या मामला ज्यादा जरूरी है, या हमारे पास सोचने का टाइम और दिमागी एनर्जी है,
हाँ,
तो टाइप टू सिस्टम बीच में दखल दे सकता है, इंटरवेंशन कर सकता है।
अच्छा,
वो उस डिफॉल्ट जवाब को जांच सकता है, उसे सुधार सकता है, या फिर पूरी तरह से खारिज भी कर सकता है।
अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। इसका कोई उदाहरण है जिसे ये और साफ हो जाए?
हाँ, बिल्कुल है। एक क्लासिक उदाहरण है विश्वास पूर्वाग्रह का, बिलीफ बायस जिसे कहते हैं।
विश्वास पूर्वाग्रह, ये क्या होता है?
मान लीजिए मैं आपको एक लॉजिकल पहेली दूं।
ठीक है,
जिसका निष्कर्ष सुनने में बहुत भरोसेमंद लगता है। जैसे सभी फूल खूबसूरत होते हैं, गुलाब एक फूल है, इसलिए गुलाब खूबसूरत है।
हाँ, ये तो सही है, लॉजिकल भी है और सच भी लगता है।
बिल्कुल। अब एक और सुनिए, सभी बिल्लियां चालाक होती हैं, कुछ चालाक जीव पालतू होते हैं, इसलिए कुछ बिल्लियां पालतू होती हैं।
ये सुनने में तो ठीक लग रहा है, बिल्लियां पालतू होती हैं।
हाँ, निष्कर्ष भरोसेमंद लगता है, पर ये तर्क लॉजिकली गलत है। इस आधार वाक्य से ये निष्कर्ष नहीं निकलता।
ओहो, हाँ, अब समझा। तो इसमें होता क्या है?
होता यह है कि ज्यादातर लोग दूसरी वाली पहेली को भी सही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका निष्कर्ष भरोसेमंद लगता है। टाइप वन झट से कहता है, हाँ, ये सही लग रहा है।
अच्छा,
और वो सही लगने वाली फीलिंग इतनी ताकतवर होती है कि टाइप टू, जो लॉजिक चेक कर सकता था, वो या तो दखल नहीं देता या उसकी आवाज दब जाती है।
मतलब हमारी पहले से बनी धारणाएं, हमारे विश्वास तर्क पर हावी हो जाते हैं।
बिल्कुल, टाइप वन डिफॉल्ट जवाब देता है और टाइप टू अक्सर चुप रह जाता है।
और वो वासन सिलेक्शन टास्क वाला उदाहरण, वो भी कुछ ऐसा ही है क्या?
हाँ, वो भी टाइप वन और टाइप टू की इसी खींचतान को दिखाता है। वो थोड़ा पेचीदा है, पर समझने लायक है।
बताइए ना।
सोचिए, टेबल पर चार कार्ड रखें, हमें दिख रहा है ए के 4 7। ठीक है, हर कार्ड के एक तरफ अक्षर है, दूसरी तरफ अंक।
ठीक, ए के 4 7।
अब एक नियम बताया जाता है, अगर किसी कार्ड के एक तरफ स्वर है तो दूसरी तरफ सम संख्या होनी चाहिए।
अगर स्वर तो सम संख्या, ठीक है।
अब सवाल यह है, इस नियम की सच्चाई परखने के लिए कौन से कार्ड पलटना जरूरी है? कम से कम कौन से कार्ड पलटने होंगे?
हम सोचना पड़ेगा, ए तो पलटना ही पड़ेगा क्योंकि वो स्वर है, देखना है कि पीछे सम संख्या है या नहीं।
सही, और
के तो स्वर नहीं है, उसे छोड़ देते हैं। चार सम संख्या है, क्या उसे पलटना है? नहीं, अगर पीछे स्वर ना हुआ तो भी नियम नहीं टूटता।
बिल्कुल सही।
बचा 7, ये विषम संख्या है। अगर इसके पीछे स्वर निकल आया तो नियम गलत साबित हो जाएगा, तो ए और 7 पलटने पड़ेंगे।
शाबाश, बिल्कुल सही, जरूरी कार्ड हैं ए और सात, लेकिन जानते हैं ज्यादातर लोग क्या चुनते हैं?
क्या?
ए और चार।
चाल क्यों?
यही टाइप वन का खेल है। इवेंट्स कहते हैं दो चीजें काम करती हैं, एक है मैचिंग बायस, लोग बस नियम में जिन चीजों का जिक्र है, स्वर और सम संख्या, उनसे मेल खाते कार्ड ए और चार उठा लेते हैं, दिमाग ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता।
अच्छा।
और दूसरा है पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस, हम ऐसी जानकारी ढूंढने की तरफ झुकते हैं जो हमारे नियम या विश्वास को सही साबित करे, न कि गलत। सात पलटने से नियम गलत साबित हो सकता है, इसलिए हमारा ऑटो पायलट टाइप वन उसे नजरअंदाज कर देता है।
कमाल है, मतलब हमारा दिमाग डिफॉल्ट रूप से पुष्टि करना चाहता है, चुनौती देना नहीं।
हाँ, बहुत हद तक, लेकिन इसमें एक और दिलचस्प मोड़ है।
वो क्या?
अगर यही टास्क किसी जाने पहचाने सामाजिक संदर्भ में दिया जाए तो लोग एकदम सही करते हैं।
जैसे?
मान लीजिए नियम है, अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो उसकी उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और कार्ड है बियर पी रहा है, कोक पी रहा है, 25 साल का है, 16 साल का है। अब किसे चेक करेंगे?
अब आसान है, बियर पी रहा है वाले को ये देखने के लिए कि उम्र 21 प्लस है या नहीं, और 16 साल वाले को ये देखने के लिए कि कहीं वो शराब तो नहीं पी रहा।
देखा, अब ज्यादातर लोग सही जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि ये नियम हमारे लिए परिचित है, सामाजिक है, हमारा टाइप वन सिस्टम इसे आसानी से प्रोसेस कर लेता है और टाइप टू को सही दिशा मिल जाती है। ये दिखाता है कि हमारा तर्क कितना ज्यादा संदर्भ पर निर्भर करता है।
ये वाकई सोचने वाली बात है। तो ये तो हुई तर्क की बात, अनिश्चितता में फैसले कैसे लेते हैं, मतलब जहां सही गलत इतना साफ ना हो?
हाँ, ये एक और बड़ा एरिया है। यहाँ पर हमारे टाइप वन सिस्टम के शॉर्टकट, जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं, वो सामने आते हैं। ये डैनियल काहनेमैन और एमोस टवर्सकी का बहुत मशहूर काम है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला।
ह्यूरिस्टिक्स ये क्या होता है?
ये समझिए मानसिक अंगूठे के नियम हैं, रूल्स ऑफ थंब, जो हमें जल्दी फैसले लेने में मदद करते हैं जब पूरी जानकारी ना हो या सोचने का वक्त ना हो।
अच्छा, लेकिन इनसे गलतियां भी हो सकती हैं।
हाँ, कभी कभी ये शॉर्टकट हैं तो कभी कभी रास्ता भटका भी देते हैं।
कोई उदाहरण?
एक बहुत आम है उपलब्धता ह्यूरिस्टिक्स, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक।
उपलब्धता?
हाँ, मतलब जो जानकारी हमारे दिमाग में ज्यादा आसानी से उपलब्ध होती है, ताजा होती है या ज्यादा भावनात्मक होती है, हम उसे ज्यादा महत्वपूर्ण या ज्यादा संभावित मान लेते हैं।
जैसे?
जैसे मान लीजिए आपने अभी अभी टीवी पर किसी प्लेन क्रैश की बहुत डरावनी खबर देखी।
हाँ।
तो हो सकता है आपको अचानक हवाई यात्रा बहुत ज्यादा खतरनाक लगने लगे।
हाँ।
भले ही आंकड़े कहते हो कि कार से सफर ज्यादा खतरनाक है।
हाँ।
क्यों? क्योंकि वो प्लेन क्रैश की इमेज आपके दिमाग में बहुत ताजा, बहुत उपलब्ध है।
हाँ, ये तो होता है, बिल्कुल होता है।
और कोई? श्रेणी का सदस्य मानने लगते हैं अगर वो उस श्रेणी के हमारे बने बनाए खाके यानी स्टीरियोटाइप से मिलता जुलता है, भले ही आंकड़े कुछ और कहते हों।
इसका कोई उदाहरण?
वो लिंडा वाली प्रॉब्लम बहुत मशहूर है। लोगों को एक महिला लिंडा का वर्णन दिया जाता है, वो बहुत सोचती है, सामाजिक न्याय के मुद्दों पर बोलती है, कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाता वगैरह।
ठीक है।
फिर पूछा जाता है क्या ज्यादा संभावित है, ए लिंडा एक बैंक टेलर है, या बी लिंडा एक बैंक टेलर है और नारीवादी आंदोलन में सक्रिय है।
वर्णन सुनकर तो बी ज्यादा सही लग रहा है।
ज्यादातर लोग यही चुनते हैं, लेकिन तार्किक रूप से सोचिए, बी होने के लिए ए का होना जरूरी है, तो ए हमेशा बी से ज्यादा या बराबर संभावित होगा। लोग बी क्यों चुनते हैं? क्योंकि लिंडा का वर्णन नारीवादी स्टीरियोटाइप से प्रतिनिधित्व करता है। टाइप वन हमें स्टीरियोटाइप की तरफ खींचता है।
इन ह्यूरिस्टिक्स को कैसे देखते हैं? क्या ये बस हमारी बेवकूफियां हैं?
नहीं, यही इवांस का नजरिया थोड़ा अलग और ज्यादा संतुलित है। वो कहते हैं कि ये ह्यूरिस्टिक्स टाइप वन की गड़बड़ियां नहीं, बल्कि उसकी स्मार्ट रणनीतियां हैं। ज्यादातर समय ये तेज और ठीक ठाक काम करती हैं।
अच्छा।
हाँ, कभी कभी गलतियां होती हैं जिन्हें टाइप टू सोच समझकर सुधार सकता है, लेकिन उसके लिए वक्त और मेहनत चाहिए। इसी तरह एक और थ्योरी है, प्रोस्पेक्ट थ्योरी।
हाँ, वो क्या बताती है?
वो बताती है कि हम नुकसान से बचने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं फायदे पाने के मुकाबले। मतलब ₹1,000 खोने का दुख ₹1,000 पाने की खुशी से ज्यादा होता है, और इसीलिए हम नुकसान से बचने के लिए ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं।
और वो फ्रेमिंग इफेक्ट, किसी बात को कहने का तरीका?
हाँ, फ्रेमिंग इफेक्ट, ये भी टाइप वन का ही कमाल है। एक ही बात को अगर पॉजिटिव तरीके से कहा जाए, जैसे इस ऑपरेशन में बचने की संभावना 90% है, तो लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं बजाय नेगेटिव फ्रेम के, इस ऑपरेशन में मरने की संभावना 10% है, जबकि बात एक ही है। ये हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया है।
ये सब तो ठीक है, पर हमारी सोच पर हमारे विश्वासों और भावनाओं का क्या असर होता है? क्या किताब इस पर भी कुछ कहती है?
अरे बहुत कुछ कहती है। हमारी सोच कोई वैक्यूम में नहीं होती, वो हमारे गहरे विश्वासों और भावनाओं से मतलब लिपटी हुई है।
कैसे?
एक चीज होती है प्रेरित तर्क, मोटिवेटेड रीजनिंग।
प्रेरित तर्क?
हाँ, इसका मतलब है कि हम अक्सर उन नतीजों की तरफ ज्यादा झुकते हैं जो हम चाहते हैं कि सच हों, खासकर जब बात हमारे अपने अहम की हो या हमारी किसी पसंदीदा चीज की, जैसे अपनी राजनीतिक पार्टी या अपना धर्म या अपनी टीम।
हाँ,
हम सबूतों को इस तरह से देखते, चुनते या तोड़ते मरोड़ते हैं कि वो हमारे पहले से बने विश्वास का ही समर्थन करे। इसे कन्फर्मेशन बायस का एक रूप भी कह सकते हैं।
ये तो हम रोज देखते हैं, चाहे वो क्रिकेट मैच की हार जीत की बहस हो या राजनीतिक चर्चा। लोग सिर्फ वही आंकड़े या बातें पकड़ते हैं जो उनकी साइड को सही साबित करें।
बिल्कुल। और आखिर में इवांस सचेत सोच यानी टाइप 2 और हमारी कार्यकारी स्मृति वर्किंग मेमोरी के रिश्ते पर बहुत जोर देते हैं।
क्या रिश्ता है?
टाइप 2 की असली ताकत गहराई से सोचना, विश्लेषण करना, योजना बनाना, ये सब हमारी सीमित वर्किंग मेमोरी पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। यही उसकी सबसे बड़ी सीमा भी है, उसकी बॉटलनेक है।
अच्छा।
लेकिन इसी टाइप 2 का एक सुपर पावर भी है, वो है काल्पनिक सोच, हाइपोथेटिकल थिंकिंग।
काल्पनिक सोच मतलब?
क्षमता भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचना, वर्तमान से हटकर विकल्पों पर विचार करना। ये चीज प्लानिंग के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए बेहद जरूरी है, और ये शायद टाइप 2 का ही कमाल है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ बड़े सबक या कहिए मुख्य विषय क्या निकलते हैं? मेरे ख्याल से तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक यही है, दो मन की परिकल्पना, द टू माइंड्स हाइपोथेसिस, है ना?
हाँ बिल्कुल।
कि हमारी सारी सोच एक अकेली चीज नहीं है, ये दो सिस्टम, एक तेज पुराना सहज ज्ञानी टाइप 1 और दूसरा धीमा नया विश्लेषणात्मक टाइप 2, इनके बीच लगातार चलने वाली एक बातचीत या कभी कभी कुश्ती का नतीजा है।
सही कहा। और इसी नजरिए से हम अपनी सोच को बेहतर समझ सकते हैं। दूसरा अहम पॉइंट है सहज ज्ञान की अनुकूली प्रकृति, अडैप्टिव नेचर ऑफ इंट्यूशन।
हाँ, ये बात मुझे बहुत जरूरी लगी
कि टाइप 1 की जो गलतियां या पूर्वाग्रह हमें दिखते हैं वो असल में उसकी कमियां नहीं है, वो एक आम तौर पर बहुत कुशल, बहुत तेज सिस्टम के साइड इफेक्ट्स हैं। ये सिस्टम लाखों सालों में इसलिए बना ताकि हम तेजी से फैसले ले सकें, जिंदा रह सकें। ये अक्सर पारिस्थितिकी रूप से तर्कसंगत होता है।
पारिस्थितिकी रूप से तर्कसंगत मतलब?
मतलब असल दुनिया की भागदौड़ में जहां फैसले जल्दी लेने होते हैं वहां ये बढ़िया काम करता है। हमारे रोजमर्रा के कितने ही काम इसी सहज समझ या कह लीजिए जुगाड़ से चलते हैं।
सही बात है। तीसरा संदेश मुझे ये लगता है, तर्कसंगतता की पुनः परिभाषा, रीडेफिनेशन ऑफ रैशनैलिटी।
हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है
कि सिर्फ किताबी नियमों या लॉजिक के हिसाब से चलना ही समझदारी नहीं है। असली समझदारी, जिसे इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी कहते हैं, वो है अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल करना।
बिल्कुल।
और इसके लिए ये जानना जरूरी है कि कब अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना ठीक है और कब रुककर टाइप 2 का इस्तेमाल करना जरूरी है। जैसे शायद शेयर बाजार में निवेश करते वक्त सिर्फ गट फीलिंग काफी नहीं होगी।
सही। चौथा, और ये शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी है, तर्क पर विश्वास की प्रधानता, प्राइमेसी ऑफ बिलीफ ओवर लॉजिक।
हाँ, ये तो है।
क्या हम अक्सर तर्क का इस्तेमाल सच खोजने के लिए कम और उसे सही ठहराने के लिए ज्यादा करते हैं जिसे हम पहले से मानते हैं? विश्वास पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस, ये सब इसी के सबूत हैं।
भारत में देख लीजिए, लोग अपनी पसंदीदा राजनीतिक पार्टी या धार्मिक विचारों के सपोर्ट में कैसे कैसे तर्क ले आते हैं और जो बातें उनके खिलाफ जाती हैं उन्हें अनदेखा कर देते हैं।
बिल्कुल। और पांचवा बड़ा संदेश है सचेत विचार की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ कॉन्शियस थॉट,
यानी टाइप 2 की सीमाएं।
हाँ, हमारा टाइप 2 सिस्टम बहुत शक्तिशाली है, नो डाउट, लेकिन ये महंगा है, इसमें वक्त लगता है और बहुत सारी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। हमारी वर्किंग मेमोरी की टंकी छोटी है, इसीलिए हम ज्यादातर समय टाइप 1 ऑटो पायलट पर ही चलते हैं।
और जब कोई मुश्किल काम करते करते दिमाग एकदम थक जाता है।
हाँ, वो असल में हम इसी सीमा का अनुभव कर रहे होते हैं। इसका ध्यान रखना जरूरी है कि हम अपनी टाइप 2 क्षमता को कहाँ और कैसे खर्च करें। किताब में कई ऐसी बातें हैं जो दिमाग में घूमती रहती हैं, अगर सीधे कोट न भी करें तो उनका सार बहुत गहरा है। पहला तो यही जो हम कह रहे हैं।
हाँ,
इंसानी सोच कोई एक अकेली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग तरह के दिमागों, एक पुराना सहज और दूसरा नया सोचने समझने वाला, के बीच का एक जटिल इंटरैक्शन है। ये ड्यूअल प्रोसेस थ्योरी का बिल्कुल कोर आइडिया है। हमारे अंदर दो तरह के सोचने वाले हैं।
दूसरा अहम विचार ये लगा मुझे, इंसानी तर्क को सिर्फ इसलिए अतार्किक कह देना कि वो औपचारिक तर्क के नियमों पर हमेशा खरा नहीं उतरता, ये असल मुद्दे से भटकना है। समझदारी का असली पैमाना तो ये है कि वो इस मुश्किल दुनिया में हमें रास्ता दिखाने में कितना सफल है, और इसके लिए हमारी सहज प्रणालियां कमाल की अनुकूलित हैं।
ये तर्कसंगतता को बहुत प्रैक्टिकल बना देता है।
हाँ, ये नजरिए में बदलाव लाता है।
तीसरा गहरा विचार है, हम अक्सर सच खोजने के लिए तर्क नहीं करते, हम अक्सर उसका बचाव करने के लिए तर्क करते हैं जिसे हम पहले से सच मानते हैं।
उफ, ये तो काफी तीखी बात है, पर शायद सच है। ये दिखाता है कि हमारे विश्वास कितने पावरफुल हो सकते हैं।
हाँ, ये मोटिवेटेड रीजनिंग की ताकत दिखाता है। और चौथा, सचेत इरादे से किया गया तर्क इंसान के दिमाग की महाशक्ति है, लेकिन ये एक ऐसी महाशक्ति है जिसकी बैटरी, समझिए, जल्दी खत्म हो जाती है।
ये टाइप टू की ताकत और उसकी सीमा दोनों को एक साथ बताता है। ये शक्तिशाली तो है, पर इसका इस्तेमाल सोच समझ कर किफायत से करना पड़ता है।
तो अब असली सवाल पर आते हैं। ये सब जानना अच्छा है, दिलचस्प है, पर इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फायदा? क्या ये सिर्फ किताबी ज्ञान है?
हाँ, ये जरूरी सवाल है। क्या हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
मेरे हिसाब से बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो बेहतर व्यक्तिगत निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।
कैसे?
जब कोई बड़ा फैसला लेना हो, मान लीजिए करियर बदलना है, या घर खरीदना है, या कोई बड़ा निवेश करना है, तो पहला कदम क्या हो? अपनी पहली गट फीलिंग टाइप वन को पहचानिए। उसे सुनिए जरूर, पर वहीं रुक मत जाइए।
अच्छा,
फिर जानबूझकर टाइप टू को एक्टिवेट कीजिए। थोड़ा धीमे हुए, जानकारी इकट्ठा कीजिए, प्रोज एंड कॉन्स लिखिए, और सबसे जरूरी, अपनी पसंद के खिलाफ क्या तर्क हैं उन्हें ढूंढिए और उन पर विचार कीजिए।
हाँ, ये मुश्किल होता है अपनी पसंद के खिलाफ सोचना।
मुश्किल होता है, पर जरूरी है। दूसरा फायदा है, आज के सूचना और गलत सूचना के दौर में।
ओ हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है।
हमारा कन्फर्मेशन बायस हमें ऐसी खबरें और पोस्ट्स की तरफ खींचता है जो हमारी राय से मेल खाती हों। हम अपने ही विचारों के बुलबुले में, इको चैम्बर में फंस जाते हैं।
तो इससे कैसे बचे?
इसका तरीका है जानबूझकर एक्टिवली ऐसे विचार या सबूत ढूंढना जो हमें गलत साबित कर सकें। सिर्फ ये नहीं पूछना कि क्या सबूत मेरी बात को सपोर्ट करता है, बल्कि ये पूछना कि क्या कोई ऐसा सबूत है जो मेरी बात को काट सकता है। थोड़ा मुश्किल है, पर ये हमें ज्यादा संतुलित बनाता है।
ये तो हुआ व्यक्तिगत, और काम की जगह पर, प्रोफेशनल लाइफ में?
वहां भी ये बहुत काम का है। सोचिए, डॉक्टर, वकील, मैनेजर, इंजीनियर, कोई भी इन पूर्वाग्रहों से बचा नहीं है। एक डॉक्टर सिर्फ इसलिए गलत निदान कर सकता है क्योंकि उसने हाल ही में वैसा ही एक रेयर केस देखा था। ये उपलब्धता ह्यूरिस्टिक हुई।
हाँ।
या कोई मैनेजर किसी कर्मचारी का प्रमोशन सिर्फ इसलिए रोक दे क्योंकि उसकी पहली छाप अच्छी नहीं थी। ये हेलो हॉर्न इफेक्ट हो सकता है।
तो इसका उपाय क्या है?
लेने की एक तय प्रक्रिया बनाना, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। इससे व्यक्तिगत बायस का असर कम हो जाता है।
और रिश्तों में, बातचीत में?
हाँ, बातचीत और रिश्तों में भी ये समझ मदद कर सकती है। अगर हमें ये पता हो कि लोगों के विश्वास उनके तर्कों से ज्यादा गहरे जुड़े होते हैं,
हाँ,
तो बहस में सिर्फ तथ्यों की बमबारी करने से शायद बात न बने। हो सकता है सवाल पूछना, सामने वाले की बात ध्यान से सुनना, थोड़ी सहानुभूति दिखाना ज्यादा कारगर हो।
मतलब लड़ने के बजाय समझने की कोशिश करना।
हाँ, किसी गर्मा गर्म पारिवारिक बहस में भी दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करना, भले ही आप सहमत ना हो, तनाव कम कर सकता है।
और शायद सबसे बड़ा फायदा?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फायदा है आत्म जागरूकता और बौद्धिक विनम्रता का विकास, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी।
ये क्या है?
ये एहसास कि हम सब कुछ नहीं जानते, ये मानना कि हमारी पक्की राय या जो हमें बिल्कुल निश्चित लगता है वो कई बार सिर्फ हमारे तेज ऑटोमेटिक सिस्टम या टाइप वन का पैदा किया हुआ एक भ्रम भी हो सकता है।
अच्छा,
जब ये समझ आती है तो हम थोड़े ज्यादा खुले विचारों वाले बन सकते हैं। हम अपनी गलती मानने और दूसरों से सीखने के लिए ज्यादा तैयार हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है।
तो इस पूरे बातचीत का सार निकालें तो आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा? मेरे लिए तो शायद यही कि हम कोई, मतलब, ठंडे दिमाग वाले लॉजिकल रोबोट नहीं हैं। हमारा मैं या सेल्फ असल में एक तरह की अंदरूनी बातचीत है।
हाँ, किसके बीच?
हमारे अंदर के उस पुराने तेज सहज वाले हीरो और उस नए धीमे लॉजिकल लेकिन थोड़े आलसी से दिखने वाले पर्यवेक्षक टाइप टू के बीच। हमारी सोच, हमारे फैसले, हमारी गलतियां सब इन्हीं दोनों के तालमेल या कभी कभी टकराव का नतीजा है। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि हमारी ये जो सहज प्रवृत्तियां हैं टाइप वन वाली, वो कितनी गहरी और अक्सर कितनी उपयोगी होती हैं।
हाँ, ये बात सही है। मेरे लिए सबसे स्थायी अंतर्दृष्टि ये रही कि जिन्हें हम कॉग्निटिव बायस या पूर्वाग्रह कहते हैं, वो हमारे दिमाग के कोई खराब पुर्जे या बग्स नहीं हैं।
तो क्या है?
वो ज्यादातर एक तेज और कुशल सिस्टम के अंतर्निहित गुण या फीचर्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, जो ज्यादातर समय हमारे लिए अच्छा काम करते हैं। दूसरी बात, समझदारी या तर्कसंगतता कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें जन्म से मिली है, बल्कि ये एक स्किल है
जिसे सीखा जा सकता है।
हाँ, जिसे अभ्यास और आत्म जागरूकता से बेहतर बनाया जा सकता है। और तीसरी बात, बेहतर सोचने की शुरुआत ही खुद की सोच को समझने से होती है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है।
इवांस की ये किताब वाकई जटिल वैज्ञानिक शोध को एक ऐसे फ्रेमवर्क में रखती है जो न सिर्फ हमारी समझ बढ़ाता है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आता है। यह हमें सिखाती है कि अपनी सोच की गाड़ी को बेहतर चलाने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि इसमें कौन कौन से गैर हैं और वो कब और कैसे काम करते हैं।
तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार, अगली बार जब कोई आप झटपट निर्णय लें या किसी चीज के बारे में तुरंत कोई राय बना लें, तो बस एक पल के लिए रुकें
और क्या सोचें?
बस खुद से पूछें, क्या ये मेरा तेज सहज सिस्टम टाइप वन बोल रहा है या ये मेरा धीमा विश्लेषणात्मक सिस्टम टाइप टू है, और क्या इस खास स्थिति के लिए, इस खास फैसले के लिए यही सही सिस्टम है। बस ये छोटी सी दिमागी जांच, ये छोटी सी आत्म जागरूकता धीरे धीरे हमारी सोच और हमारे निर्णयों में बड़ा फर्क ला सकती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।